आ जाओगे आराम से चलेगा अपनी शुरू में।
उनका शीर्षक है राजा कंस के अत्याचार, अध्याय नंबर 4, श्लोक संख्या नंबर 27। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद अन्विता मिथ्ये नातम पश्यन्ति न पश्यन्ति भावै भावं पृथक दृष्टे। शोक हर्ष भया द्वेष शोक हर्ष भया द्वेष लोभ मोह मदन्विता लोभ मोह मदान्विता मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक्दृशः भावैर्भावं पृथक्दृशः शोक हर्ष भया द्वेष शोक हर्ष भया द्वेष लोभ मोह मदान्विता लोभ मोह मदान्विता मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक्दृशः भावैर्भावं पृथक्दृशः शोक हर्ष भया द्वेष शोक हर्ष भया द्वेष लोभ मोह मदान्विता लोभ मोह मदान्विता मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक्दृशः भावैर्भावं पृथक्दृशः
शोक हर्ष भय
द्वेष
लोभ मोह मदान्विता
मिथो ज्ञातं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक्दृशः शोक हर्ष भय द्वेष
माता जी
शोकार शबया द्वेष
शब्दार्थ इस प्रकार है शोक शोक हर्ष प्रसन्नता भय डर द्वेष ईर्ष्या लोभ लालच मोह मोह मद पागलपन अन्विता से युक्त मत परस्पर ज्ञातम मारने में व्यस्त न पश्यन्ति नहीं देखते भावे भेद भाव के कारण भावम भगवान के प्रति अपनी स्थिति को पृथक दृश्य ऐसे व्यक्ति जो हर वस्तु में भगवान को देखता है जो नियंत्रण से पृथक मानते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। वेद भाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से सम्मित होते हैं। उपादान कारण के प्रभाव प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दुरस्त परम कारण निमित्त कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। तात्पर्य कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणम, किंतु जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता वह आसान कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या विभिन्न की भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है तो वह रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। तत्ते अनुकंपा सुसमक्षियो माना भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है। भक्त जब किसी विपत्ति में होता है तो तो वह जानता है कि यह उसके अपने विकट दुष्कर्मों के कारण है जो अब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हुआ है। यद्यपि भगवान की कृपा से यह मामूली है, कर्मानि निर्हति किंतु च भक्ति भाजाम। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बल्लभ सुमित्रा महाराज। जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियों के कारण कष्ट भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में कभी भी कई भूलों के कारण रहता है किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करते हैं और भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं। इस तरह उसे भौतिक शोक हर्ष भय आदि कभी नहीं सताते। भक्त किसी भी कार्य को भगवान के संबंध के बगैर नहीं देखते। श्रीला मध्वाचार्य इस पर कहते हैं, अपने भविष्य पुराण में उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवत दर्शनात् यस्य विरोधा दर्शनम पृथक पृथक दृष्टि स विज्ञेयो न तु सत भेद दर्शन। होम ज्ञान तिमिरांगस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापित येन भूतले स्वयं रूप ग्रामीण ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री उदपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सार्वभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इन श्लोकों में जहां पर वसुदेव कंस को उपदेश दे रहे हैं, तो कंस ने अपना जो प्रवचन करते करते जब पूरी तरह अपने आप में ग्लानी करने लगे, तब तो वो उनके जब चरणों पे जब गिर गए तब वसुदेव अब इस उपदेश को आरंभ करते हैं। तो यहां पर वसुदेव कंस को समझा रहे कि शोक हर्ष भया द्वेष, ये जितने भी हमारे हृदय के अंदर के जो अनर्थ हैं, ये सारे अनर्थ व्यक्ति इस सारे अनर्थ के रहने के कारण हर वस्तुओं को पृथक पृथक दृष्टि से वो देखता है, अलग अलग दृष्टि से देखता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर शारीरिक भावना होने के कारण हर व्यक्ति की देखने की दृष्टि अलग रहती है। तो जैसे एक मच्छर जब एक युवक को अगर एक युवक व्यक्ति जब देखता है तो वो उसकी सुंदरता को देखता है, लेकिन जब उसी युवक को जब एक मच्छर देखता है तो वो केवल देखता है कि यहाँ पर मेरा ब्लड बैंक है या यहाँ पर मेरा भोजन है। तो वो जो एक युवक का देखने का दृष्टि अलग है और एक मच्छर का देखने का दृष्टि अलग है, लेकिन भोग प्रवृत्ति है। वैसे 84 लाख योनियों के विभिन्न प्रकार की दृष्टियां हैं और विभिन्न प्रकार की दृष्टियां होने के कारण विभिन्न प्रकार के देह भी प्राप्त होते हैं। तो यह मुख्य कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को शारीरिक स्तर पर मानता है तब वो व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि को देखता है। तो जैसे इसी दृष्टि के विषय में जो कि श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जहां पर राजा रघुगण जड़ भरत को समझाते हुए बताते हैं कि ऐसे मत से मैं पीड़ित हो चुका हूं जिस कारण से मेरे अंदर नाना प्रकार के रोग चढ़ चुके हैं। तो कहते हैं ज्वरा मयार्थस्य यथा गदम स्याद् निधत्स धत्तस्य यथा हिमाम्ब कुदेह मानहि विदस्त दृष्टे ब्रह्मण वचस्ते अमृतम औषधम में। तो कहते पंचम स्कंद के 12वें अध्याय के 2वें श्लोक में बताते हैं ज्वरा मयार्थस्य यथा गदम स्याद्, क्योंकि मेरे अंदर यह बीमारी चढ़ चुकी है, यथा गदम स्याद् वो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषध की आवश्यकता पड़ती है, निधत्त धत्तस्य यथा हिमाम्ब, ठीक उसी तरह जिस प्रकार सूरज के ताप से व्यक्ति जब पीड़ित हो जाता है तो उस ताप से उसे राहत मिलता है जब उसे शीतल जल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कुदेह मान ही विदस्त दृष्टे, वैसे ही मेरी दृष्टि में बदलाव आ चुका है, किस कारण से कुदेह मानी ही, जिस प्रकार एक सर्प जो जहरीला सर्प जब अपना डंक मारता है तो व्यक्ति के शरीर में विष चढ़ जाता है, वैसे ही मुझे माया के द्वारा डंक मारने के कारण मेरे अंदर अभिमान का विष चढ़ चुका है, जिस कारण से मैं हर वस्तु को अलग अलग जो वास्तविक उसका स्वरूप है उससे न देखते हुए उसको कुछ और दृष्टि से देख रहा हूँ। मगर हे ब्राह्मण, हे जड़ भरत, आपका जो दिव्य वचन है ये मेरे चित्त को या मेरे दृष्टि को शुद्ध कर रहा है। तो ब्रह्मण वचस्ते अमृतम औषधम में, तो ऐसे यहां पर जड़ भरत को राजा रघुगण स्तुति गाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में जब माया के सर्प का जब विष जब चढ़ता है तो हर वस्तु को पृथक दृष्टि से देखता है, वो ये नहीं देख उसके वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो ये जो पृथक दृष्टि होने का मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण यह है कि जैसे ही व्यक्ति इस देह को प्राप्त करता है, ये जो देह जो पंचभूत से बना हुआ जो देह जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से बना हुआ ऐसे देह को जब धारण करता है तब उस जीव के अंदर पृथक दृष्टि आने की संभावना आ जाती है और इस कारण से शोक मोह भय द्वेष इत्यादि उसके अंदर भर जाता है। तो मुख्य उसका जो भौतिक देह उसे जो जब तक व्यक्ति के पास भौतिक देह है तब तक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के पृथक दृष्टि रहने की संभावना रहती है। जब वशिष्ठ मुनि जब निमि महाराज के प्रसन्नता के लिए जब वो यज्ञ हवन करने के लिए जब उन्हें जब बुलाया गया था तब वो वहां पर आए थे, तब उसी समय यज्ञ हवन जब करने के लिए जा ही रहे थे तब देवताओं का बुलावा आया। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं स्वर्ग लोक में जाकर यज्ञ हवन करके आता हूँ, फिर तुम्हारा यज्ञ आगे बढ़ाता हूँ। तब उन्होंने उनसे आज्ञा लेकर जब निकल गए तो यहाँ पर पुरोहितों ने कहा निमि महाराज को, देखो समय बड़ा बीतता जा रहा है तो शीघ्र ही तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसे कहते ही उन्होंने जब यज्ञ हवन जब शुरू कर दिया तब इतने में वशिष्ठ मुनि आए। अब जब आए तो उन्हें अपमान महसूस हुआ, कि मेरे गैर हाजिरी में भी इन्होंने यज्ञ हवन शुरू कर दिया। और ये विचार करते ही उनके हृदय क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि तुम्हारा देह नष्ट हो जाए। और जैसे ही उनका भौतिक देह नष्ट हो गया, तब यहां पर निवी महाराज ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी देह नष्ट हो जाए। अब दोनों जन ने एक दूसरे को श्राप देकर अपने देह नष्ट कर दिए। तब देखे कि देवगण लोग देखने लगे कि राजा के पदवी में कोई बैठा नहीं है, तो राजा के पदवी में किसी को बिठाना होगा। तो सभी लोग निवेदन किए, तब निमि महाराज से कहा कि आप एक नया भौतिक देह लीजिए। तब निमि महाराज इस श्लोक को कहते हुए बताते हैं, देहम न अरुक्षेहम दुख शोक भयाप सर्वत्र यथोर मृत्युर मत्स्यानाम गतो यथा। वो कहते हैं कि मुझे वो देह नहीं चाहिए जिस देह में, देहम ना अरुक्षेहम, जिसके अंदर दुख शोक भय भरा हुआ है। इस देह के अंदर केवल अनेक अनेक प्रकार के जो व्यक्ति तीन काल से जो पीड़ित है, भूत वर्तमान भविष्य, जो हर व्यक्ति शोक में डूबा हुआ है। शोक क्या? भूतकाल से पीड़ित है कि जो वस्तु मेरे पास था अब नहीं है। मोह से पीड़ित है, जो वस्तु है उसे वो संतुष्ट नहीं है। और भय से पीड़ित है कि जो मेरे पास वस्तु है कहीं भविष्य में छूट ना जाए। ऐसे देह, जिस देह से ऐसे अनेक अनेक प्रकार के पीड़ा जो भरी हुई है जिस देह में, वो देह मुझे नहीं चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति क्यों? तो उदाहरण देते हैं जैसे कि मत्स्यानाम यथोगता, जिस प्रकार मछली जो है जल के भीतर रहती है, तो जल के भीतर रहने के बाद भी जो मच्छी निरंतर घबराती रहती है, हालांकि उसके खाने के रहने की सारी व्यवस्था वो जली है, लेकिन तत्पर भी मच्छी अपने स्थान पर रहने के बाद भी निरंतर घबराती रहती है। ठीक उसी तरह मनुष्य जो जीवन, जो कोई व्यक्ति, चाहे ब्रह्मलोक से चींटी कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने देह प्राप्त किया है, उसके अंदर एक भय बना हुआ है कि कभी मेरी मृत्यु ना हो जाए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ब्रह्मा जी की भी आयु जिस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली, जो कि 1000 बार जब इसका चक्र चलता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन का 12 घंटा होता है, वैसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते, उनको भी मृत्यु ग्रस्त करती है और उनको भी मृत्यु से भय रहता है, तो एक साधारण जीव का क्यों नहीं होगा। तो जैसे एक ऋषि हुए जो कि लोमश ऋषि करके एक ऋषि हुए, जो कि लोमश ऋषि के पास एक बार नारद मुनि आकर पूछने लगे। अब ये लोमश ऋषि के आयु के विषय में बताया जाता है कि एक ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, तब लोमश ऋषि के शरीर से एक रोम गिरता है। तो वैसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीने के बाद वो जब मरते, तब लोमश ऋषि के शरीर से एक रोम गिरता है। वैसे लोमश ऋषि सागर के तट के यहाँ पर जप कर रहे थे, तब नारद मुनि ने आकर उनको कहा कि तुम कुटिया वगैरह बनाकर क्यों भजन क्यों नहीं करते, ऐसे कड़ी धूप में क्यों कर रहे हो। तो लोमश ऋषि ने कहा कितना दिन जीना है। अब वहां पर लोमश ऋषि, जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, इतने दीर्घ काल तक जिएंगे, तत्पर भी उनके मन में ये विचार है कि कितना दिन जीना है। तो लोमश ऋषि ये अपनी अवस्था बता रहे हैं, तो सोचिए कि यहाँ पर एक साधारण जीव जो कि 60-70 साल तक मुश्किल से जीते हैं, वैसे व्यक्ति के मन में कितने बड़े बड़े सपने रहते हैं। तो वास्तविकता ये जो देह जब किसी ने प्राप्त किया है, तो उसकी मृत्यु ध्रुव है। तो वो जो मृत्यु से हमेशा घबराता रहता है, लेकिन जो एक भक्त होता है उसके लिए मृत्यु कभी डर नहीं होता, जबकि उसके लिए मृत्यु मोक्ष का द्वार होता है। एक भक्त के भक्त तो मृत्यु को आमंत्रण करता है, लेकिन अभक्त लोग मृत्यु को टालते रहते हैं। जैसे चित्त मानेर यमेर एते कृत नीतम वनस्पतिम ठकस्प केतम उश्रिज्य क्षेमम याति या लंपटा। जैसे बताया जाता है कि एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया जब बैठकर जब घोंसला वगैरह बनाकर वो बड़े मेहनत से बता क्रीट नीतम वो अनेक अनेक प्रकार के तिनके वगैरह लाकर उस घोंसले को बनाती है, और बनाने के बाद अच्छी तरह उसी पेड़ में रहती है, लेकिन जब लकड़ी काटने वाला जब व्यक्ति आता है तो खगस्प के तमुश्रिज तुरंत ही वो चिड़िया उस पेड़ से उड़ जाता है। तो हालांकि चिड़िया ये नहीं सोचती है कि मैं इतना मेहनत करके इस घोंसले को बनाई तो मुझे थोड़ा समय और रुक जाना चाहिए, वो नहीं सोचती, वो तुरंत ही उस पेड़ को छोड़कर। ठीक इसी तरह एक भक्त जो होते हैं वो अपने देह को तुरंत ही छोड़कर चले जाते, जैसे ही उसे पता लगता है कि अब मृत्यु आ गया उसके पहले ही वो अपने देह को छोड़ देते हैं। तो वैसे मृत्यु को देखने की दृष्टि एक अभक्त की कैसे रहती और एक भक्त का कैसे होता है। तो भगवान सबको दर्शन देते हैं, चाहे अभक्त हो या भक्त हो, सबको दर्शन देते हैं। बस अंतर इतना है कि अभक्त के सामने भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं और भक्त के सामने भगवान श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं। है तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, मगर वही इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर से जाता है तो गर्म हवा देता है, और वही जब एसी से गुजरता है तो ठंडा राहत हवा देता है। वैसे ही भगवान वही जो कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भावना से भगवान के पास समर्पण होता है वैसे भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान को दर्शन नहीं करता, जो अभक्त होते हैं वह हर वस्तु को जड़ रूप में देखते हैं, और भक्त लोग हर वस्तु को चेतन के रूप में देखते हैं। ये अंतर है अभक्त और भक्त के दृष्टि में। एक बार की बात थी कि एक बार एक राजा ने एक मंत्री को पूछा कि मंत्री बताओ तुम हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो क्या करते हैं। ये तीन प्रश्न उनको पूछ लिया। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं विचार करके बताता हूँ। तो बड़े चिंता में जब अपने घर पर गए तो बड़े मायूस बैठे थे, तो बालक उनके लड़के ने पूछा पिताजी क्या हुआ, तो कहा कि राजा ने ऐसे प्रश्न पूछा है। तो लड़के ने कहा चिंता मत करो बड़ा आसान उत्तर है मैं जाकर दे दूंगा। तो दूसरे दिन लड़का आया पिताजी के साथ, तो राजा ने पूछा मंत्री को क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर लाया, तो बोला मेरा लड़का दे देगा आपको आपके प्रश्न का उत्तर। तो बोला ठीक है तो बोलो उत्तर बोलो। तो इन्होंने कहा बालक ने कहा हे राजन जब कोई व्यक्ति अतिथि आपके पास आता है आपके द्वार पर आता है कम से कम आप अतिथि सत्कार तो जानिए कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे ही क्या सीधे प्रश्न पूछना शुरू। बोला अच्छा ठीक है क्या खाओ क्या पियोगे, तो बोला दूध पियूंगा। तो बोला ठीक है, तो सोने के ग्लास में उसके लिए दूध लाया गया। अब वो जब दूध लाया गया तो दूध में अपनी उंगलियां घुमाने लग गया, तो राजा ने पूछा क्या कर रहे हो कितने देर से तुम क्या कर रहे हो, तो बोला नहीं मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है तो मैं मक्खन को ढूंढ रहा हूं। तो बोले दूध में मक्खन होता है मगर ऐसे नहीं दिखता। तो बोला कैसे, उस दूध को रखा जाता है उसमें जब खट्टा डाला जाता है तब वो दही बनता है, फिर उसको मंथन किया जाता है तब जाकर वो मक्खन बनता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कहकर उसने दूध पी लिया। तब उन्होंने कहा अच्छा तो आपका क्या प्रश्न था, तो इन्होंने कहा पहला मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा दूध में मक्खन है क्या? बोला है और नहीं भी। तो है तो जब है तो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रकट नहीं किया गया। तो उसको जब तक मंथन नहीं किया जाएगा तब तक वो वस्तु उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान सभी स्थान पर उपस्थित है लेकिन भगवान को देखने के लिए व्यक्ति को अपने आंखों का मंथन करना होगा और तब जाकर वैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने जब दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया तब अब तीसरा प्रश्न, तो बोला अच्छा अब तीसरा प्रश्न क्या था? बोला तीसरा प्रश्न क्या है कि तुम्हारे भगवान करते क्या है? तो इन्होंने कहा हे राजन आप गुरु बन के प्रश्न पूछ रहे हो या शिष्य बन के पूछ रहे हो? क्या प्रश्न, किस प्रकार आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो मेरा स्थान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, आपका स्थान नीचे रहना चाहिए, तो मैं उत्तर दूंगा तब। बोला ठीक है। तो राजा उतर गया और उनको अपने गद्दी में बिठा दिया। अब जब राजा उनको बिठा दिया तब इन्होंने पूछा अच्छा तीसरा प्रश्न क्या था? बोले तुम्हारे भगवान क्या करते? तो बोला मेरे भगवान ये करते हैं, कभी तुम राजा बनोगे तो दूसरे जन्म में मैं राजा बनूंगा, जैसे अभी हुआ। तो ये कर्म का चक्र है। तो वैसे जो व्यक्ति भगवान को हर स्थान पर दर्शन करता है तो वो व्यक्ति हर वस्तु के अंदर चेतन रूप के रूप में भगवान को देखता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता वह हर वस्तु को जड़ रूप में देखता है। इसलिए यहाँ पर यह शब्द उपयोग किया गया है पृथक दृष्टि। हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टि होता है। जब भगवान मथुरा में, जब भगवान कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी जब लेकर जा रहे थे, लेकर गए मथुरा में, तब उस समय जैसे ही भगवान कृष्ण वहां मथुरा में जहां पर उस स्थान पर पहुंचे तब कंस ने बड़ा चाल से उन्हें मारने के लिए मुष्ठी बड़े सुडेल व्यक्तियों के साथ उनका युद्ध रखा गया। अब उस स्थान पर जब कृष्ण और बलराम जी वहां पर पहुंचे तो उस मैदान में वो बल जो बड़े बड़े बलशाली थे उनके साथ जैसे ही कुश्ती के लिए उतरे तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को कहते हैं मल्लानव असिनेर निर्णाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानम स्वजनो सताम शीति भुजाम सस्ताश्व पित्रो शिशु मृत्युर भोज पतेर विराट अविदुषाम त्वत्तम परम योगिनाम तत्वतम परम योगिनाम वृष्णीनाम परत वेतेति विदितो रंगम गत सागरज। तो कहने लगे सुखदेव गोस्वामी जब भगवान कृष्ण जब युद्ध के लिए जब उतरे तो बताया जाता है मल्लानाम असनिर निर्ण नरवर। तो जो बड़े बड़े जो हृष्ट पुष्ट सुडेल व्यक्ति जो थे वो लोग भगवान कृष्ण को एक बिजली के रूप में देख रहे थे। तो बिजली जिस प्रकार जो बिजली जो गिरते ही किसी को नाश कर देता है वैसा, और कुछ व्यक्ति लोग भगवान को नरवरा एकदम पूर्ण व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, परफेक्ट मैन। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, तो कुछ स्त्रियां जो कि भगवान को काम के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में देख रहे थे। गोपानाम स्वजनो सताम, तो जितने भी उनके गोप लोग हैं, जो वहां के गोप लोग, वो लोग उन्हें केवल अपने संबंधी के रूप में देख रहे थे। क्षिति भुजाम शाश्वत, तो जो कपटी राजा थे, पापी राजा थे, वो भगवान को दंड के रूप में, ये मुझे मेरे करतूत को दंड देने वाले ऐसे राजा हैं। मृत्यु भोज पतेर, और कंस जो देख रहे थे कृष्ण को तो मृत्यु के रूप में देख रहे थे कि ये मेरे मृत्यु है। और विराट अविदुष्याम, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति थे वो भगवान को विश्व रूप के रूप में दर्शन कर रहे थे। तत्वम परम योगिनाम, और योगी लोग ये देख रहे थे कि हाँ यही ध्यान करने के योग्य वस्तु है। वृष्णि नाम पर विदितो, और जितने भी वृष्णि वंशी थे वो सभी लोग भगवान को एक पूजनीय मूर्तिमान स्वरूप के रूप में देख रहे थे। तो अब वही भगवान जो कि रणभूमि के बीच में खड़े हैं, लेकिन सबके दृष्टि अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो पृथक दृष्टि, वो अलग अलग दृष्टि से वो देख रहे थे। तो जैसे कि जो गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल को जब कोई देखता है तो क्या देखता है, क्या भगवान ने सृष्टि रचाया। देखो फूल तो है लेकिन इतने सारे कांटे, लेकिन एक जो सकारात्मक बुद्धि वाला दृष्टि वाला अगर देखेगा तो ये देखेगा क्या भगवान की अद्भुत सृष्टि है। ये देखिए इतने सारे कांटे हैं लेकिन उसमें भी एक सुंदर गुलाब। तो देखने की दृष्टि व्यक्ति की बदल जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति एक चीकू के पेड़ के नीचे बैठा था, तब वो बड़ा थका हुआ था, बैठा था, तो उसकी आंखों के सामने कुछ कलिंगर के फल नीचे अटके हुए थे। तो वो देखकर वो कहने लगा क्या भगवान को सृष्टि रचाने भी नहीं आता है, ये बड़े बड़े फल को ऊपर रखना चाहिए, छोटे छोटे फल को नीचे रहना चाहिए। क्या कर दिया, बड़े बड़े फल को नीचे लटका रहे, छोटे छोटे फल को ऊपर। अब ऐसे भगवान की सृष्टि को दोषारोपण करते हुए उनकी आंख लग गई और वो सो गया, और कुछ ही समय पर एक चीकू सीधा उसके माथे पर गिरा। अब जब गिरा तो वो विचार करने लगा, वाकई भगवान की सृष्टि सोच समझ क्या है, अगर यही चीकू के बदले अगर कलिंगर होता तो मेरा सर भी कलिंगर जैसा लाल हो जाता। तो वैसे व्यक्ति की जो देखने की दृष्टि अलग अलग है, इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं एक एक पदार्थस्तु त्रिविध भवति विक्षिता पुम 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 पुंपः कामी भी मांसम योगी भी कामी भी स्वभी। तो बताते कि एक व्यक्ति को तीन लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। त्रिविध भवति विक्षिता, अब कौन कौन, एक योगी भी। एक योगी जब उस एक युवती कन्या को जब देखते हैं तो ये देखते कि ये तो पुनः वही है, मलमूत्र से बना हुआ वही देह। और जब एक स्व भी, एक काम भी, एक कामी व्यक्ति जब देखता है तब वो केवल उनकी सुंदरता को देखता है, और स्व भी। और एक कुत्ता जब देखता है तब वो देखता है कि हाँ यहाँ पर मेरा नाश्ता जा रहा है, तो वो केवल भोजन के रूप में देखेगा। तो वैसे एक ही वस्तु को तीन दृष्टि से देखने के व्यक्ति की होती है। तो देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति के विचार बदलने से व्यक्ति की दृष्टि बदलती है। तो यहाँ पर वसुदेव ये समझा रहे कि देखो हर वस्तु का मुख्य जो कारण है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए आगे बताते हैं भावई भावम पृथक दृश्य। तो जो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रण होता है, ये दृष्टि देखने के लिए अभक्तों के अंदर नहीं होता है। अभक्त लोग इस दृष्टि से नहीं देख सकते। तो समझा रहे कि ऐसे दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का दो कारण होता है, एक होता है उपादान कारण, दूसरा होता है निमित्त कारण। तो जो निमित्त कारण जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष सामने जो दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं निमित्त कारण, लेकिन उस निमित्त कारण के पीछे एक और एक कारण होता है, उसे कहते हैं उपादान कारण। और वो देखने के लिए व्यक्ति को समझदारी या ज्ञान चक्षु चाहिए। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढानानु पश्यन्ति, विमूढ़ व्यक्ति इस वस्तु को नहीं देख पाते। तो वैसे जैसे कि उदाहरण के तौर से एक मिट्टी से बना हुआ एक मटका है, तो वो मिट्टी से बना हुआ मटका उसका निमित्त कारण क्या है कि एक मटका बनाने वाले व्यक्ति ने उसे बनाया, ये उसका निमित्त कारण। लेकिन उसका उपादान कारण क्या है? वो मिट्टी से बना हुआ है। अब मिट्टी किन्होंने बनाया? वो तो भगवान के देन से ही है। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, तो व्यापारी था, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या करते, तो इन्होंने कहा मैं बर्तन वगैरह बनाकर बेचता हूँ, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाकर बेचता हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा मिट्टी कहाँ से लाते, तो उन्होंने कहा मैं इसी स्थान से लेकर आता हूँ। तो बोले तो मिट्टी कौन बनाता है? तो बोला मिट्टी कौन बनाता है, वो तो भगवान की देन है। तो बोले क्योंकि तुम भगवान से वस्तु चुरा रहे हो और उसी चुराए हुए वस्तु को तुम बेच रहे हो, यानी तुम चोर हो। अब इन्होंने कभी ऐसा वाक्या नहीं सुना था, बहुत जगह बहुत लोगों की टिप्पणी सुनी थी, लेकिन इन्होंने पहली बार ये सुन लिया कि मैं चोर हूँ, और प्रभुपाद ने घोषित करके दिखाया, साबित करके दिखाया। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी मैं दान भी देता हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम छोटे चोर हो, वजन चोर ही हो। तो वो जो बंदा जो था, वो उसके पीछे का जो उपादान कारण है उसको नहीं देख पा रहा था। तो जो उपादान कारण क्या है कि हर वस्तु के पीछे भगवान की उपस्थिति है। जैसे कि कोई अगर को भगवान की जो सृष्टि जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, काल और जीव शक्ति के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है, तो वैसे जो वो काल शक्ति यानी कि समय के प्रभाव से प्रकृति के तीन गुणों का जब संपर्क, सत्वगुण का संपर्क जब अहंकार से हुआ तो देवगण उत्पन्न हुए, इस प्रकार अलग अलग सत्वगुण का जब प्रभाव जब रजोगुण से हुआ तो बुद्धि हुआ, फिर मन हुआ, ऐसे अलग अलग वस्तु उत्पत्ति हुई है लेकिन काल के प्रभाव से। तो हर वस्तु को बनाने के लिए व्यक्ति को समय की आवश्यकता रहती है। जैसे भोजन अगर बनाना है तो समय लगेगा, तब जाकर भोजन पकेगा। उसी प्रकार हर वस्तु को यानी भक्ति को भी परिपक्व करने के लिए उसे समय का इंतजार करना होगा, तब जाकर भक्ति परिपक्व होगा। तो हर वस्तु के लिए उसे समय की आवश्यकता है। अब जब समय की आवश्यकता है उस वस्तुओं को बनाने के लिए, लेकिन साथ में और दो चीज चाहिए, और वो ये है कि पात्र की आवश्यकता है। पात्र के साथ उस वस्तुओं पात्र के अंदर डालने के लिए हमें वस्तु की आवश्यकता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रकृति स्वयं ये पात्र भी बनती है और वस्तु भी उत्पन्न करती है, तो वो प्रकृति स्वयं करती है। और वो जब पात्र और वस्तु बनती है और समय के साथ वो जब पकता है, लेकिन मुख्य पकाने वाला चाहिए, तो पकाने वाला कौन है? तो वो जिस प्रकार वो भजन पकाने वाला एक व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति है, उसी प्रकार ये सृष्टि को रचाने वाला जो मुख्य व्यक्ति जो उपादान कारण जो है वो है भगवान। तो वैसे कृष्ण जो पूरे सृष्टि के रचेता है उन्हें उपादान कारण कहते हैं, और उस स्थिति तक भक्त लोग देखने की दृष्टि रखते हैं, और इस कारण से वो जानते हैं कि सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। और इस तरह वो हर वस्तु में भगवान के ही इशारे को समझते हैं। वो अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, यार इच्छा नाचे ते तैसे करे नृत्य। तो इसलिए भक्त के जीवन में जब दुख संकट भी आता है तो यही सोचता है कि यह भगवान की देन है। वो दुख संकट को भी वो संपत्ति के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए महादेव पार्वती को कहते महाविपत्ते संसारे यत स्मरित मधुसूदना विपत्ते तस्य संपत्ति भवत इत्यादि शंकरा। तो महादेव कहते विपत्ति जो है ये केवल एक भक्त के लिए संपत्ति है। कैसे? क्योंकि यत स्मरित मधुसूदना, क्योंकि विपत्ति में मधुसूदन का स्मरण होता है, और इसीलिए वही विपत्ति उसके लिए सीढ़ी है भक्ति में प्रगति करने के लिए। लेकिन अभक्त लोग उसी विपत्ति को ये देखते हैं कि ये मेरे सामने वाले व्यक्ति के कारण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए दुख जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट को या उस पदार्थ को दोष नहीं देना चाहिए, उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे ही दुष्कर्म से प्राप्त हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो हमें दुख प्राप्त होता है, जिसके द्वारा प्राप्त होता है, उस निमित्त को अगर हम निंदा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन की समस्या और जटिल हो जाती है और कष्ट बढ़ जाता है। इसीलिए हर वस्तु के पीछे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये भगवान के दिए हुए देन है। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की, वो भी भगवान के लीलाओं को समझने के लिए भ्रमित हो गए। अब जब भ्रमित हो गए तब उन्होंने जब भगवान के लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में जब दर्शन किया, जब ब्रह्मा जी को सब पता लग गया कि यह वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कहते हुए कहते हैं, अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम तम वेतिसी सर्वदृक् त्वम एक जगन्नाथो जगत एतत् तव अर्पितम। तब ब्रह्मा जी के दृष्टि ये खुल गई और ब्रह्मा जी ये कहने लगे, अनुजानी ही माम कृष्णा। और पहले तो खूब स्तुति के प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद भी उन्होंने देखा कृष्ण के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो कभी कभी व्यक्ति जब कुछ बोलते नहीं है और कुछ उसके चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं होगा, तब विचार ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या सोचता होगा या क्या मेरे प्रति भावना रखता होगा। तो वैसे यहाँ तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए और चकित होकर वो विचार करने में ये पड़ गए कि शायद मुझे जल्दी रवाना होगा, रवाना होना चाहिए। तब वो कहने लगे, अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम त्वम वेतिषी सर्वत्रिक, मैं जान गया हूं कि आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। त्वम एक जगन्नाथ हो, आप ही पूरे विश्व के नाथ हो। जगत एतत् तव अर्पितम, मैं वही जो पूरे विश्व को आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तो ये ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं से ये बता रहे कि कैसे भगवान को हर स्थान पर दर्शन करने मात्र से उनकी समस्त समस्या सुलझ गई। इसीलिए प्रह्लाद महाराज जो कि इतने उच्च कोटि के भक्त थे, वो ऐसे ही भगवान को हर स्थान पर दर्शन करते थे। जब पुराण में जहां पर वर्णन आता है कि प्रह्लाद को जब पूछा गया कि प्रह्लाद तुम्हें इतने सारी समस्त प्रकार से तुम्हें पीड़ा किया गया, तुम्हें अनेक अनेक प्रकार से तुम्हें मारा गया, फिर भी तुम कैसे भगवान का स्मरण बनाए रखे। अब ये संत अमरक पूछ रहे प्रह्लाद को कि जब तुम्हें अग्नि में फेंका गया तुमने कैसे भगवान का नाम लिया, तुम्हें पहाड़ से फेंका गया, तुम्हें जंगली पैरों के हाथी में रौंदा गया और सर्पों के बीच में रखा, फिर भी तुम भगवान का नाम ले रहे। तब उन्होंने कहा, देखो जब मुझे अग्नि में रखा गया तब मैं भगवान का स्मरण कर रहा था, अग्नि में भी मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। तो बोले कैसे, तो बोले अग्नि जो है ये भगवान का मुख है और जो यज्ञ हवन जब करते तो व्यक्ति अग्नि में अर्पण करते, ये कहते हुए कि ये भगवान के मुखारविंद में अर्पण कर रहे। तो जब वही जो मेरे आराध्य भगवान नारायण है तो उसके मुख में जब मुझे रख देंगे तो भला अग्नि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा जब तुम्हें पहाड़ से फेंका गया तब तुमने भगवान नारायण का कैसे स्मरण किया। तब वो कहने लगे, जब मुझे पहाड़ से फेंका गया तो कहां, तो जमीन पर फेंका, भूमि पर फेंका गया। अब ये भूमि क्या है, ये भूमि जो कि भगवान की अर्धांगिनी भगवान की पत्नी है। भगवान जब वराह रूप के इसमें जब अवतरित हुए थे तब उस समय उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की, तब उस समय पृथ्वी ने मूर्तिमान स्वरूप धारण करके वराह भगवान से विवाह किया, तो पृथ्वी मेरी माँ हो गई। तो जब मुझे जब पहाड़ से फेंका जा रहा था तो वही पृथ्वी केवल प्रतीक्षा कर रही थी कि कब बालक मेरे गोद पर आ गिरेगा ताकि मैं उसे रक्षा कर सकूं। अच्छा जब तुम्हें जंगली हाथी को पैरों में जब रौंदा गया तब तुमने कैसे भगवान का स्मरण किया? तो इन्होंने कहा कि जब मुझे जंगली हाथी को पैरों के नीचे जब रौंदा गया तब उस समय मैं ये सोच रहा था कि जो हाथियों का जो राजा जो है गजेंद्र, जो कि हाथियों का राजा है, वो जब भगवान का भजन करने में इतने तलीन हो गए जो कि हाथियों का राजा, तो उनके चेले मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हें सर्पों के बीच में डाला गया तब, तो बोले जो जितने भी छोटे मोटे सर्प हैं ये तो सब अनंत शेष के ही अनु उनके ही सब सेना लोग हैं, तो वैसे अनंत शेष के सैया में नारायण लेटते हैं वैसे अनंत शेष के चेलेगण मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा जब तुम्हें जहर पिलाया गया तब तुमने कैसे भगवान का स्मरण किया? तो कहा कि जो जहर ये कहां से उत्पन्न हुआ है? समुन्दर से। अब ये समुन्दर से और एक व्यक्ति उत्पन्न हुई है जो कि लक्ष्मी जी। अब जब लक्ष्मी जी जिस स्थान से आई वहीं से ही जहर भी आया, तो लक्ष्मी जो है मेरी, लक्ष्मी नारायण मेरे आराध्य भगवान है, लक्ष्मी मेरी माँ है, तो जो लक्ष्मी जिस स्थान से आई तो जहर कौन हो गया? उनका भाई हो गया, तो जहर मेरा मामा हो गया। अब ये संत मरुख को नहीं समझ पड़ रहा था, वो लोग खुद ही मामा बन रहे थे। तो वैसे यहां पर प्रहलाद हर स्थान पर भगवान को देखने की दृष्टि रखते थे। तो वो जो दृष्टि, अगर किसी ने उस उपादान कारण को अगर देखने में कोई सक्षम हो गया, तब फिर उसके लिए सारा जो दुख भी है वो केवल वो इसी रूप में देखिएगा कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है। और यहाँ पर वसुदेव वही शिक्षा कंस को समझा दे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रश्न है? क्षमा करिएगा थोड़ा समय जा, क्योंकि मुझे लेट ही बैठना हुआ क्योंकि कीर्तन थोड़ा बड़ा हो गया था, इसके लिए क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।